ओम शांति। देखो कौन सबसे पहले शांत हो सकते हैं, चेक करो अपने आप। अभी अभी बहुत खुशी अनुभव किया और अब बिल्कुल साइलेंस का आनंद, तो अपने आप में देखिए अपने आप को कितना जल्दी आप शांत कर पाते हैं। सुंदर गीत बजेगा, 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे।
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिन्होंने भी सौगात नहीं ली है, मेहमान भाई बहनों ने, उन सभी को आज शाम 7:30 बजे डायमंड हॉल में ही सौगात मिलेगी, तो कृपया करके आज ही अपनी सौगात ले लीजिएगा। और एक दूसरी अनाउंसमेंट है, जो भी भाई बहने जैन दशा पौड़वाल समाज के आए हुए हैं, वो कृपया 1 बजे हॉल में ही ठहरे रहे, आगे आ जावे। आप सभी से प्रीति बहन और नम्रता बहन मिलेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। पूर्व सत्र में बहुत सुंदर बातें आपने समझी। एक तीव्र गति के परिवर्तन से हम पास हो रहे हैं। हमारे आसपास का जगत भी बहुत जल्दी से बदल रहा है और व्यक्ति स्वयं भी भीतर से बदल रहा है। अब समय है अपनी आंतरिक शक्तियों को उजागर करने का, साधनों के बल से चल रहे हैं, पर अब आवश्यकता ये भी होगी कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों के आधार से जीवन को जीना होगा। बहुत सुंदर विषय पर अपना ये कॉन्फ्रेंस है, गोल्डन एज फॉर बिजनेस थ्रू स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक ज्ञानोदय द्वारा व्यापार में स्वर्णिम युग। इस विषय को 3 सेशन में लिया जाएगा। पहला है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, दूसरा सत्र है कि व्यापार में स्वर्णिम युग किसको कहेंगे, और तीसरा है कि सफलता के लिए कौन सी योग्यताओं का कैसे विकास किया जाए। हम अध्यात्म प्रधान भारत देश के नागरिक हैं, हमारी संस्कृति के नींव में आध्यात्मिकता के बीज हैं। पश्चिम के देशों के लोग जब अपने दैनिक जीवन से ऊब जाते हैं तो वे अति जातीय स्वतंत्रता ले लेते हैं या ड्रग्स का सेवन करके नशे में पड़े रहते हैं। पर हमारी संस्कृति की नींव में आध्यात्मिकता होने के कारण जब भी हम अपने सांसारिक रूटीन जीवन से चेंज चाहते हैं तो आप देखिए हम ऐसे वार त्योहार मनाते हैं जो हमें नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक सत्यों की ओर जागृत करते हैं। इसलिए भारत के त्योहार आध्यात्मिक रहस्य को लेकर के बनाए गए, हिंदू समाज की रचना ऐसे की गई कि समय प्रति समय ऐसे त्योहार तिथि आते हैं और उस समय हम फिर से अपने आंतरिक स्वरूप की ओर जाते हैं। आज स्थिति अगर हम देखें तो बाह्य रीत रस्म रही है, आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता क्या है वो हमें समझना जरूरी है। गणित शास्त्र को हम अच्छी तरह से जानते हैं, 2+2 4 होता है। उसके सामने किसी का प्रश्न नहीं है कि 4 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, क्योंकि ये गणित शास्त्र की बेसिक मूलभूत बात है। शरीर विज्ञान शास्त्र को भी हम जानते हैं कि इसको हाथ कहते हैं, इसको मस्तक कहते हैं। वहां हमें कोई प्रश्न नहीं है कि इसको पांव क्यों नहीं कह सकते, इसको पेट क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये बेसिक ऑर्गन्स हैं, शरीर के मूलभूत अंग हैं। पर अध्यात्म प्रधान भारत देश के नागरिक होते हुए भी हमें अध्यात्म के मूलभूत सत्यों का ज्ञान नहीं है। हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, ये संसार का चक्र कैसे चलता है, कर्म की गति क्या है, समय कौन सा चल रहा है, ये जो मूल सत्य है उनका सही ज्ञान हमारे पास नहीं है, बल्कि अनेक मते हैं। हम कह सकते हैं कि हम अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की स्थिति में चल रहे हैं। इसलिए परमात्मा को सृष्टि पर आना पड़ता है, वो आकर के सत्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। आज दुनिया में इतने अनेक शास्त्र है, ग्रंथ है, अनेक किताबें हैं, अनेक चिंतक है, अनेक रिसर्च हो रहे हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद भी और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आज हमें घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से मिल रही है। एक मेहमान ने कार्यक्रम के अंत में अनुभव में बताया कि मैं वीआईपी बनकर यहाँ आया और वीआईपी बनकर जा रहा हूँ, पर अर्थ में अंतर है कि पहले हम वेरी इग्नोरेंट पर्सन थे, आज एज ऑफ इंफॉर्मेशन में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन मिनटों में मिल जाती है, तो आज हम वेरी इन्फॉर्म्ड पर्सन बन गए हैं। और अब यहाँ आकर जो सत्य ज्ञान मिला है और उससे जो अवेयरनेस मेरे में आई है, अब सही अर्थ में मैं वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन बन के जा रहा हूँ। तो ये हम सबको लागू होता है और इतनी इन्फॉर्मेशन्स है, इतने ग्रंथ किताब शास्त्र है, इतने साहित्य प्रकाशित होते हैं, फिर भी हम परमात्मा को क्यों कहते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। क्यों हम परमात्मा को कहते हैं कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ? क्योंकि परमात्मा आकर के हमें मूल सनातन सत्यों का ज्ञान देते हैं। इसलिए आज जीवन में सही ज्ञान की आवश्यकता है। तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट इसलिए ताकि हम वो सहज रास्ते बना सके जिससे हमें सफलता मिले। आज के कंपटीशन के माहौल में एक व्यापारी सफल होना मुश्किल अनुभव करता है। बिजनेस इंडस्ट्री के फील्ड में जब से हमारी गवर्नमेंट ने ओपन पॉलिसी अपनाई है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है, तब से आप देखिए दुनिया भर की चीजें हमारे मार्केट में आने लगी है। पहले हमारी प्रोडक्ट ही हमारे मार्केट में सेल होती थी, पर अब दुनिया भर की चीजें हमारे मार्केट में आने लगी है। तो स्वाभाविक है कि अगर हमारी प्रोडक्ट में कोई यूनिकनेस ना हो, कोई स्पेशलिटी ना हो, या हमारे पास आर्ट ऑफ बिजनेस ना हो, तो आज के इस ग्लोबल कंपटीशन के वातावरण में सफल होना मुश्किल है। और अगर हमें अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटी बनाना है तो हमारे पास हाईएस्ट लेवल का नॉलेज चाहिए, हाईएस्ट लेवल की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम अपनी चीज को यूनिक बना सकते हैं। इसलिए सफल होने के लिए मुश्किल महसूस होता है तो आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक जागृति, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट मीन्स जाग जाना, विवेक खुल जाना। तो ये आध्यात्मिक जागृति अगर हमारे में आएंगे तो हम सफलता के सहज रास्ते बना सकेंगे। और ना सिर्फ हम सफल होने की बात, लेकिन वो सफलता को सस्टेन कर सके, बना के रख सके। आपने देखा होगा कई बार व्यक्ति सफल तो हो जाता है कोई भी कारणों से, सफलता को तो वो पा लेता है, परंतु वो सफलता बनाए रखने के लिए भी योग्यता चाहिए। अगर वो योग्यताएं नहीं हैं, तो हमारी अपनी ही कोई कमजोरी, अवगुण, गलत आदत के कारण हम सफलता के शिखर से नीचे आ जाते हैं। सत्यम कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा, जो अपने आप में बहुत सफल हुए पर खुद ने ही खुद की कंपनी में घोटाला कर दिया। एक लोभ लालच के संस्कार के कारण वो शिखर से नीचे आ गए। इंद्राणी मुखर्जी का भी नाम आपने पढ़ा है किस्सा, कि जो कितनी सफल हुई और कितनी धनाढ्य बनी, पर खुद ने ही गुनाह कर दिया और आज वो किस हालत में है। ऐसे कई किस्से आपने देखे होंगे। बीच में दिल्ली के एक पत्रकार का गोवा में भी किस्सा हुआ था कि लोग चाहे खुद की योग्यता, नॉलेज, संपर्क संबंध, पावर, पोजीशन, कॉन्टेक्ट के बल से सफल तो हो जाते हैं, पर अपनी सफलता को बनाए रख सके उसके लिए भी लायकात चाहिए, योग्यता चाहिए, वैल्यूज चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट सफलता के सहज रास्ते बनाने के लिए, सफलता को टिकाए रखने के लिए, और इसका अर्थ यही है कि हम अपने मन वचन कर्म में, अपने विचार वाणी व्यवहार में ऐसी क्वालिटीज लाएं जिन क्वालिटीज के आधार से हम सफल हो सके। वास्तव में जो व्यक्ति अपनी क्वालिटी से बिजनेस करते हैं उनको कभी भी कंपटीशन महसूस नहीं होती है, क्योंकि वो अपनी क्वालिटी से ही विशेष बनते हैं। तो इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य यही है, टू ब्रिंग इन द एबिलिटी to create simple and easy pathways for achievement. हम दूसरों से comparison, competition न करें, पर खुद की विशेषताओं से अगर हम अपना कारोबार करें तो हम सहज और सरल रास्ते सफलता पाने के बना सकते हैं। वो इस कार्यक्रम से आपको बताना है। आज ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ी है अपनी आंतरिक योग्यताओं के आधार से। मैं एक अनुभव आपको बताना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारीज का बिजनेस इंडस्ट्री फील्ड में कैसे आना हुआ। 89-90 में इस विश्वविद्यालय का एक प्रोजेक्ट था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अगर बेहतर संसार हमें बनाना है तो सर्व के सहयोग से हम सुखमय संसार बना सकते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी प्रोफेशन वालों के सेमिनार वर्कशॉप करते थे और हम कहते थे कि संसार को बेहतर, सुखमय, श्रेष्ठ बनाने में आप अपने प्रोफेशन में रहते हुए क्या कोऑपरेशन दे सकते हैं। अपनी अच्छाइयों का कोऑपरेशन देना है। तो ऐसी ही एक बिजनेस इंडस्ट्री फील्ड के लिए हमारा सेमिनार था और उसमें हैदराबाद नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, नाम आपने सुना होगा, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय मिस्टर केवी के राजू थे, वो इस कार्यक्रम में आए थे और कार्यक्रम चल रहा था। अचानक कार्यक्रम के बीच से लाइट चली गई, लेकिन फिर भी कोई हलचल और घबराहट, कोई शोर शराबा, विसल मारना, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, बहुत शांति से कार्यक्रम चलता रहा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना डिसिप्लिन से ये कार्यक्रम कैसे चलता रहा। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने कहा कि मैं आपके हेडक्वार्टर को विजिट करना चाहता हूं। माउंट आबू वो विजिट करने आए, उस समय सिर्फ हमारा पांडव भवन जो ओरिजिनल कैंपस है, 1950 में जहां ये विश्वविद्यालय सिंध हैदराबाद से शिफ्ट होकर कराची से यहां आया था, वो पांडव भवन कॉम्प्लेक्स आप भी परसों जब घूमने जाएंगे तब देखेंगे। 7 एकड़ का वो कैंपस, बाद में आसपास की थोड़ी जमीन मिली, अभी 10 एकड़ का वो कैंपस है। तो वो वहां आए तो उन्होंने हेडक्वार्टर के कई डिपार्टमेंट को विजिट किया। बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट बने हुए थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि बिजली विभाग, वाटर सप्लाई विभाग, कारपेंट्री, ऑडियो वीडियो विभाग, वेल्डिंग, किचन, ऐसे अनेक डिपार्टमेंट वहां भी थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि डिपार्टमेंट हेड और सेवा करने वाले कोई हाईली एजुकेटेड भी नहीं है। और दूसरा आश्चर्य लगा कि ये तो कोई सैलरी भी नहीं ले रहे हैं और फिर भी इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे चल रही है। जब वो दादी जी से मिले, उस समय दादी प्रकाशमणि जी थे, तो दादी जी से जब वो मिले तो उन्होंने कहा कि दादी जी ये तो बड़ा वंडर है, मैं तो अपनी कंपनी में हाईली एजुकेटेड लोगों को अपॉइंट करता हूँ, हाई सैलरी देता हूँ और ट्रेनिंग देकर के हम इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं तो भी हमें सफलता नहीं मिलती है, और आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कोई पढ़े इतने नहीं हैं, कोई सैलरी नहीं ले रहे हैं, कोई ओवरऑल ऑर्डर करने वाला, सुपरविजन करने वाला नहीं है, और फिर भी ये ऑटोमेटिक कैसे कारोबार चल रहा है, इसका राज क्या है। हमारे यहाँ तो लोग काम करने आते हैं पर उसके अंदर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिम्मेवारी से काम नहीं करते हैं, ऑनेस्टी से नहीं करते हैं, उमंग उत्साह से नहीं करते हैं। तो दादी जी ने एक ही शब्द में जवाब दिया कि सफलता का राज एक ही है, आध्यात्मिकता। कि यहाँ जो नियमित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, इससे हरेक खुद अवेयर है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिम्मेवारियां क्या है। तो वो दिल से अपना समझकर कार्य करते हैं तो उनको बड़ा क्लिक हुआ कि आज हमें अपनी कंपनीज में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ दिमाग लेकर आवे तो नहीं चलेगा, सिर्फ अपने हाथ पांव काम में लगाए इससे नहीं चलेगा, लेकिन हेड, हैंड्स एंड थर्ड हार्ट, दिल से अगर वो काम करेंगे, अपना दिल लगाएंगे तो सफलता मिल सकती है। तो हार्ट लाना मीन्स क्वालिटीज लाना, अपने गुणों को कार्य में लगाना। तो वो फर्स्ट इंडस्ट्री है जहां विद्यालय को पहली बार इनवाइट किया गया कि आप हमारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर में आइए और ऐसा मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स बनाइए और चलाइए और हमारे एम्प्लॉइज ऑफिसर्स को आप ट्रेनिंग दीजिए। तो विद्यालय ने भारत की आध्यात्मिकता और वेस्टर्न मैनेजमेंट साइंस को लेकर बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया, सेल्फ मैनेजिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि हम अपनी आंतरिक योग्यताओं का विकास करके हम कैसे अपने व्यापार और उद्योग का सफल नेतृत्व कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता जो है वो हमारे कर्मों में, विचारों में, हमारे व्यक्तित्व में आंतरिक गुण और शक्तियों का विकास करता है। आप समझ सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाता है काम करने के लिए वो अपनी पर्सनालिटी के साथ जाता है। उसकी पर्सनालिटी की जो अच्छाइयां हैं, विशेषता है, वो भी उसके कार्य क्षेत्र में सफल होने में मदद करती है और वही उनकी कमजोरियां, बुराइयां, खामियां भी उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। इसलिए केवल कार्यक्षेत्र का ज्ञान पाकर हम उस फील्ड में जाते हैं तो पूरी सफलता नहीं मिलती है, पर अगर हम आध्यात्मिकता के द्वारा अपना आंतरिक विकास करें और उन गुण और शक्तियों के साथ हम कार्य करें तो हम भांत भांत के लोगों के साथ, भांत भांत की परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के द्वारा हम आप सभी व्यापार उद्योग क्षेत्र के भाई बहनों को ये सिखाना, बताना चाहते हैं कि हम सफलता के लिए सहज और सरल रास्ते बनाएं और उसके लिए कैसे योग्यताएं ला सके। दूसरा, हलचल में अचल कैसे रहे। आज हलचल का वातावरण है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना है कि आज प्रति वर्ष आपको पता रहे, प्रति वर्ष विश्व में 80-90 हजार इंडस्ट्री बंद होती है। आप देखिए, पहले टेलीफोन कैसे आते थे, उसके बाद कॉर्डलेस टेलीफोन आए और उसके बाद ये मोबाइल आ गए। इस प्रकार आप देखिए, पहले ग्रामोफोन हम बजाते थे, फिर टेप मशीन आए, कैसेट, फिर सीडी प्लेयर आए और आज हम एक छोटे से पेन ड्राइव में कितने प्रोग्राम भर लेते हैं। तो हर चीज में आज इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ हम अपने आप को भी अपडेट नहीं करेंगे तो आज के हलचल के वातावरण में सफल होना मुश्किल लगेगा। अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीरियड से हम गुजर रहे हैं। आज हर इंडस्ट्री का डिजिटलाइजेशन, रोबोटाइजेशन, ऑटोमेशन हो रहा है। इसलिए अगर आज के इस तीव्र गति के परिवर्तन के माहौल में अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो तो हमें चलना मुश्किल लगेगा। आपको पता होगा अहमदाबाद एक जमाने में कॉटन इंडस्ट्री में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता, पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के समय नई मशीन्स आई और जिन्होंने वो एडवांसमेंट एडॉप्ट नहीं किया, ऐसी सैकड़ों कॉटन इंडस्ट्री की मिल्स उस समय बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने इस क्रिएटिविटी को अपनाया नहीं। अभी अभी का आप देखो, एक समय नोकिया मोबाइल इंडस्ट्री में नंबर वन था, पर उसके बाद वो डाउन हो गया और सैमसंग आगे आ गया, क्योंकि समय पर क्रिएटिविटी नहीं की तो वो पिछड़ गए। जब नोकिया के सीईओ से मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि वी डिड नथिंग रॉन्ग, हम लोगों ने कोई दपला घोटाला नहीं किया हमारी इंडस्ट्री में, पर हमने समय पर क्रिएटिविटी नहीं की इसलिए हम पीछे हो गए। तो आज रचनात्मकता, क्रिएटिविटी इज पावर। इंडस्ट्री के इतिहास बताता है कि एक जमाना था लैंड वॉज पावर, जो जितना बड़ा जमींदार होता था, जितने बड़े राज्य विस्तार का राजा होता था, वो पावरफुल माना जाता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो समय था मनी वॉज पावर, जो जितना धनवान है वो पावरफुल है। लेकिन आज क्रिएटिविटी इज पावर, माइंड इज पावर। जहां जितनी रचनात्मकता है वो कंपनी, वो इंडस्ट्री आगे बढ़ जाती है। इसलिए आज के इस हलचल के वातावरण में प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। कब क्या चेंज एडॉप्ट करना है, कब क्या पुट ऑन कर लेना है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। एक उदाहरण, एक कहानी बताती हूँ कि एक अमेरिकन और एक भारतीय दोनों जंगल से पास हो रहे थे। अचानक शेर की गर्जना हुई, दोनों भय के मारे दौड़ने लगे। अचानक इंडियन खड़ा हो गया और जंगल बूट निकाल कर रनिंग शूज पहनने लगा। तो ये देखकर अमेरिकन पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम ये समझते हो कि रनिंग शूज पहनने से तुम शेर से भी तेज दौड़ोगे। तो इंडियन कहता है कि शायद शेर से तेज तो नहीं दौड़ूंगा, पर तेरे से तो तेज दौड़ूंगा। तो शेर एक शिकार खाएगा तब तक मैं आगे निकल जाऊंगा। ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि कब हमें अपने बिजनेस में क्या करना है। आज हम अपने व्यापार में सफल होने के लिए बाह्य नवीनता करते हैं, आउटलुक चेंज करते हैं, दुकान स्टोर का सेटअप चेंज करते हैं, सिस्टम बदलते हैं, पर अब आवश्यकता है, आध्यात्मिकता एक नई दिशा की ओर इशारा करती है कि अब नवीनता खुद के अंदर करने की जरूरत है। हमें अपने स्वभाव संस्कार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हमें कुछ वैल्यूज एडॉप्ट करने की जरूरत है, ताकि हमारे कस्टमर्स कहें कि अब ये सेठ बदल गए हैं, पहले बहुत गुस्सा करते थे अब नहीं करते हैं। हमारे कर्मचारी एम्प्लॉइज भी अनुभव करें कि अब हमारे सेठ बहुत अच्छे हो गए हैं, पहले हमें मशीन की तरह यूज करते थे, अब वो हमारे वेलबींग का भी सोचते हैं। तो इतना जब तेजी से परिवर्तन आ रहा है तो हमें अपने आप को अपडेट करने की, अच्छे गुण और शक्तियों को धारण करने की जरूरत है। एम्पावर वन सेल्फ टू इंस्पायर अदर्स। हमें अपने आप को इतना सशक्त, सक्षम, योग्य बनाना है ताकि हम दूसरों को इंस्पायर कर सके। सिर्फ कहे नहीं, ऑर्डर नहीं, पर हम खुद ऐसा करें कि दूसरे भी सीखें। आज अपने एम्प्लॉइज को आप कहेंगे राइट टाइम आओ, राइट टाइम वर्क करो, पर हम खुद राइट टाइम नहीं आएंगे तो वो नहीं सीखेंगे। इसलिए हमें भी अपने आप को ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि हम एग्जाम्पल बनेंगे तो वो हमसे सीखेंगे। टू रिजोल्व इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ एज एंड कम्फर्ट। बातें हर क्षेत्र में आती। हम कलयुग के अंत समय से गुजर रहे हैं, अब सहज जीवन नहीं रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। इस वातावरण में हम अपने अंदर इतनी शांति, प्रेम, धीरज, हिम्मत भरें, जो कोई भी बातें आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, आपस में टकराव होते हैं, विवाद होते हैं, पर हम शांति और प्रेम से, सहजता से सॉल्व कर सके। आप देखिए, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उनका सॉल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, अक्सर बाहर ढूंढते हैं। इसको ठीक कर देंगे तो बात ठीक हो जाएंगी, इसको हटा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हम बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। पर भाइयों और बहनों, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि कई समस्याओं का कारण हम खुद भी होते हैं, हमारे अपने स्वभाव संस्कार भी होते हैं। अगर हम स्वयं का परिवर्तन कर लेंगे तो वो समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती है। इसलिए पहली आवश्यकता है कि खुद को देखें कि ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आया है उसका कारण कहीं मेरे तरफ से तो नहीं है। तो जितना, कई बार हम कहते हैं ना कि बात ऐसी आई ना, परेशान हो गए हम, तो टेंस हो गए। अब हम ही परेशान हो गए तो हम सॉल्यूशन कैसे लाएंगे? इसलिए जितनी बड़ी समस्या है उतनी अधिक शांति, मन की स्थिरता, बुद्धि का संतुलन जरूरी है। और वो तभी आएगा जब आप आध्यात्मिकता और योग का जीवन में समावेश करेंगे। और पांचवा एम है इस कार्यक्रम का, टू कंडक्ट वन सेल्फ थ्रू टास्क एंड कमिटमेंट्स विदाउट स्ट्रेस। जो हमारे कमिटमेंट है, क्योंकि बिजनेस में कमिटमेंट चाहिए, समय पर माल तैयार करके देना, समय पर सप्लाई करके देना, पर ये कमिटमेंट या अपने कार्य हम प्रेम से, आनंद से कर सके। आज हम अपना कारोबार चला रहे हैं पर प्रेशर से चला रहे हैं, टेंशन से चला रहे हैं। हम प्लेजर से, खुशी और आनंद से चला सके, ऐसी क्षमता अपने आप में लाना, ये इस कार्यक्रम का एम ऑब्जेक्ट है। आपके सामने कुछ प्रश्न है, आप पढ़िए और अपने आप को चेक करिए। टाइम ज्यादा नहीं है, नहीं तो हम इस पर एक्सरसाइज कराते हैं कि हरेक अपने आप को देखें। क्या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। देखो कई कहते हैं मैं तो थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, मेरी तो शक्ति ड्रेन हो गई। बहुत जल्दी कई व्यक्ति थक जाते हैं। तो आप देखो क्या आप जल्दी थक जाते हैं। दूसरा, बहुत छोटी छोटी बातों में क्या आप दूसरों पर चिढ़ जाते हैं? कभी बच्चे कुछ पूछते हैं, कभी हमारे वर्कर्स कुछ पूछते हैं, हम बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तीसरा, आप देखिए कि बातें जब आती है तो उसका सामना करने की शक्ति नहीं होती है। तो क्या आप अपने आप को परिस्थितियों का सामना करने में अक्षम, कमजोर महसूस करते हैं? चौथा प्रश्न है कि आप कुछ, कोई बात ऐसी होती है कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं पर फिर भी बहुत सोचते रहते हैं, है ना। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हम इसके संबंध में कुछ कर नहीं पाते हैं पर मन बहुत चलता रहता है, ऐसा तो नहीं है? पांचवी बात, सामान्य रूप में भी बहुत आराम करने की आपको जरूरत पड़ती है, चेंज की जरूरत पड़ती है। माना बहुत सामान्य बातों में भी आप में शक्ति नहीं रहती। इज देयर एन एबिलिटी, इनएबिलिटी, दूसरों के प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, बातें आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं? क्या आप शांति से, धीरज से अपने साथियों की, परिवार में चाहे आपके बिजनेस में, क्या सुनने की क्षमता रखते हैं? आप देखो, दूसरों को डांटने की क्षमता ज्यादा है या दूसरों के प्रॉब्लम्स को शांति से सुनने की आप में क्षमता है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं और निर्णय लेना मुश्किल लगता है। बहुत जल्दी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज डिप्रेशन का कारण क्या है? कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है, क्लियर इंटेलेक्ट नहीं है, इसलिए परख नहीं सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं, परिस्थिति का निवारण नहीं होता है और मुंझते रहते हैं। छोटी छोटी बातों में क्या आप टाइम वेस्ट करते हैं? दूसरों के साथ एडजस्ट करना मुश्किल है, पारिवारिक जीवन में, संबंधों में या कार्यक्षेत्र में मुश्किल है एडजस्ट करना, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जो हैं जैसे हैं लोग एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, उसके कारण ही तो हम टीम में वर्क नहीं कर पाते। एक कंपनी ने हमें सर्वे करके बताया था कि एक भारतीय में तीन जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता है, भारतवासी इतने एबल है, इतने विवेक वाले हैं, उन्होंने कहा एक भारतीय में तीन जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता है। परंतु दूसरी बात बड़ी वंडरफुल उन्होंने कही कि जब दो भारतीय मिलते हैं तो एक जैपनीज जितना ही काम कर पाते और तीन भारतीय मिलते हैं तो काम ही नहीं होता। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये सेल्फ रियलाइज करने की बात है कि हम मिलके नहीं चल पाते हैं। क्योंकि हमारे में एडजस्टमेंट पावर नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू एक्सपीरियंस रेगुलर हेडेक्स? बहुत जल्दी माथा गर्म हो जाता, सिर दर्द हो जाता है। अगर इसमें से 50% भी बातें हैं आप फील करते हैं तो हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करें। तो ये बताता है कि हमें आध्यात्मिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, हमें अपने आंतरिक स्वरूप को जानने की और अपनी शक्तियों को विकसित करने की मेथड सीखने की आवश्यकता है। आज हम जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं उसको कैसे फेस करते हैं, तीन कैटेगरी के लोग हैं। लिव अमंग्स द लिविंग, कुछ लोग ऐसे हैं कि जैसे सब जीते हैं ऐसे जीते रहो, टेंस होते रहो, हलचल में आते रहो, दुखी होते रहो, हाँ, और चलते रहो बस। कई ऐसे जीवन को चला रहे हैं, अपने कारोबार को चला रहे और मन में नेगेटिविटी भरते जा रहे हैं। दूसरे कई हैं जो सोचते हैं लिव एज लाइफ कम्स, जैसी बातें आए ऐसा देखा जाएगा, कर लिया जाएगा, आग लगे तब कुआं खोदने बैठ जाएंगे, ऐसे लोग हैं ये। ये पहले से अपने को अपडेट करना, तैयार करना, एवर रेडी बनाने में नहीं सोचते हैं, पर वो समझते हैं कि बातें आएंगी तो देख लेंगे। वो पहले से एग्जाम आती है तो दौड़ा दौड़ करो, रात रात पढ़ो, पेपर फोड़ो, पैसे खिलाओ, पर पहले से पढ़ के तैयार होना नहीं चाहते, तो वे वेट करते हैं कि बात आए तो चेंज होंगे, खुद की समझ से परिवर्तन करना नहीं चाहते। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो लीव फॉर लाइफ, जब इतना महान मानव जीवन मिला है तो व्यवस्थित जीना है, योग्यता से जीना है। आज आप टीवी में, न्यूज में पार्लियामेंट के दृश्य देखते हैं, उनके बहस झगड़े, उनके बिहेवियर देखते हैं तो सोचते हैं ना कि ये कोई देश को चलाने की मैनर्स नहीं है। पर कहीं हम अपने घर में, अपने कार्यक्षेत्र में तो ऐसे नहीं चलते। तो हमें भी ये रियलाइज करना है कि टेंस होते रहे, रूठते रहे, गुस्सा करते रहे, मनमुटाव होता रहे, इस प्रकार जीवन जीना, कार्य करना, ये सही मेथड नहीं है। परिस्थितियां हमें बदले नहीं, हम पावरफुल बने, परिस्थिति को चेंज करें। यही भारत देश है, हमारे ही बड़े बुजुर्ग, हमारे ही पूर्वज ऐसे थे जिनके संकल्पों में शक्ति थी, जिनके बोल में शक्ति थी कि मैंने सोच लिया कितनी भी मुसीबत आए मैं करूंगा, मैंने वचन दिया मैं निभाऊंगा। और आज हम हैं जो कहते हैं कि क्या करें, लोग ऐसे हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है, सब करते हैं बेईमानी भ्रष्टाचार इसलिए हम भी करते हैं। आज वही भारत देश के हम नागरिक हैं, पर हम अपनी आंतरिक आत्मशक्ति, विल पावर, संयम गंवा बैठे हैं, क्योंकि उसका जो सोर्स है आध्यात्मिकता, हम इसको नहीं अपना रहे हैं। हम धर्म के नाम पर क्रियाकांड कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, बाह्य चार कर लेते हैं, पर सच्ची आध्यात्मिकता आंतरिक परिवर्तन लाती है, अपने आप को महान बनाती है, वो चीज हम नहीं अपना रहे। तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक बैलगाड़ी में एक मजबूत नाभि होती है, आपने देखा होगा बैलगाड़ी के नीचे एक मजबूत लकड़ा होता है जिस पर ये पहिए लगे हुए होते हैं, और वो मजबूत नाभि लकड़ा जो है उसके आधार पर वो पहिए घूमकर इतना वजन खींचकर गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। इन द सेम वे द सेल्फ इज द हब, हम वो मूल केंद्र बिंदु हैं, नाभि हैं। हमें बहुत सारी प्रवृत्ति करनी, हमें बहुत सारी जिम्मेवारियां उठानी हैं, हमें बहुत आगे बढ़ना है। हर एक चाहते हैं ना कि हम रात ही रात मल्टी मिलियनर हो जाए, हम सफल हो जाए, एक दुकान है हमारी पांच दुकान बन जाए, बड़ा स्टोर बन जाए, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बन जाए, हमारा लाखों का टर्नओवर हो जाए। हर कोई अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, पर अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। आज परिस्थितियों को फेस करने के लिए क्या चाहिए, सोचिए साइलेंस में
बैठे। सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता
लास्ट बात कि जब भी परिस्थिति हमारे सामने आती है बिजनेस में या परिवार में, अचानक नुकसान होता है, खर्च आ जाता है, संबंध टूटते हैं, बीमारी आ जाती है, कोई शरीर छोड़ते हैं, इन परिस्थितियों को फेस करने के लिए उस क्षण फर्स्ट फॉरमोस्ट उस मोमेंट हमें क्या चाहिए? धन, साधन, संबंध, संपर्क, सत्ता, पद बाद में काम आते हैं, पर फर्स्ट उस मोमेंट हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, धीरज, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, शांति, क्लैरिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, ये आंतरिक योग्यता चाहिए और वो हम आध्यात्मिक ज्ञान और योग से ला सकते हैं। भाई और बहनों, आध्यात्मिकता कोई और चीज नहीं है, अधि आत्मिकता, आत्मा चैतन्य शक्ति के संबंध में अधिक ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। ये मूल ज्ञान है जो हमारे अपने अस्तित्व से जुड़ा है और वो ही आपको यहाँ सिखाया जाएगा। ओम शांति।